वसुधा ने अभिमन्यु और इशिका की शादी का सच बता दिया था, लेकिन उससे एक बात निकल कर आई थी। इशिका और अभिमन्यु की शादी एक अलग ही स्थिति में हुई थी। वो शादी किसी की सोची समझी साजिश थी। इशिका इस साजिश के बारे में पता लगाना चाहती थी। वसुधा से बात करने के बाद इशिका खोए हुए अंदाज में बाहर आई। वो सोच रही थी कि जिसने भी ये साजिश की थी उसे कैसे बाहर निकाला जाए। तभी अचानक किसी ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया था। इशिका का ध्यान टूटा तो उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। उसके पास अभिमन्यु खड़ा हुआ था। उसी ने इशिका का हाथ पकड़ा था। अभिमन्यु ने इशिका से पूछा, क्या सोच रही हो तुम?
बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, इशिका ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने तुम्हें कहा था इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ था। अगर किसी ने साजिश की भी है तो आज नहीं तो कल वो सामने आ जाएगा। मैं पृथ्वी को इस मामले में इन्वॉल्व होने का बोल दूंगा, अभिमन्यु ने इशिका को तसल्ली देने के लिए कहा। इशिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर वो दोनों अंदर जाने लगे। इशिका या अभिमन्यु दोनों में से कोई कुछ आगे बोलता उससे पहले अभिमन्यु का मोबाइल बजा। अभिमन्यु ने कॉल रिसीव किया। इशिका कॉल पर उनकी बात सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन काफी शांति थी तो उसे सामने वाले इंसान की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कोई लड़की थी। उसने काफी प्यार से कहा, अभिमन्यु क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? हम साथ में डिनर करते हैं। मैं बिजी हूँ, अभिमन्यु ने थोड़ा रूडली जवाब दिया। कुछ पल रुकने के बाद लड़की ने वापस कहा, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरी हालत और खराब हो सकती है। अभिमन्यु मुझे अकेले खाने का बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज आ जाओ। इशिका की नज़रें अभिमन्यु पर टिकी हुई थी। वो समझ गई थी कि ये कॉल प्रणाली का है। वो बस अभिमन्यु के जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ पल रुककर अभिमन्यु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अभिमन्यु के हाँ कहते ही इशिका को अपने दिल में दर्द जैसा महसूस हुआ। इशिका अभिमन्यु से लड़ना नहीं चाहती थी। अभिमन्यु के कॉल काटते ही इशिका बिना कुछ बोले कमरे में जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इसी के साथ इशिका के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु उसके साथ रहना चाहता है या प्रणाली के साथ। इशिका ने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, ठीक है चलते हैं। अभिमन्यु उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर गया। इशिका से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गाड़ी में बैठने के बाद कुछ दूर आगे जाने पर इशिका ने अभिमन्यु से कहा, आखिर तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और अपनी टाई ढीली करते हुए कहा, जब हम छोटे थे तब उसने मेरी जान बचाई थी। बदले में मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। प्रणाली के साथ जो भी हो रहा था उसका जिम्मेदार अभिमन्यु खुद को समझ रहा था। उसकी वजह से प्रणाली को वापस अपनी फैमिली में जाना पड़ा, जबकि उसने काफी बार उन किडनैपर्स की बातें सुनी थी। प्रणाली का बिहेवियर अच्छा था, इसलिए वो उसे बेचने के बजाय किसी अच्छी फैमिली में भेजना चाहते थे ताकि उसे माँ बाप का प्यार मिले। वही अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका चौंक गई। उसने अपने मन में कहा, वादा तो मुझे भी किसी ने किया था कि बड़े होने पर वो मेरे पास आएगा और मुझसे शादी करेगा। अब समझ आ रहा है कि दादी ने ऐसा क्यों कहा था कि प्रणाली ने अभिमन्यु पर एहसान किया है। उसके बाद आगे उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जल्द ही वो मेंटल असाइलम पहुंच चुके थे। वहां जाकर इशिका ने देखा कि अभिमन्यु ने उसके लिए पूरा एक VIP वार्ड बुक कर रखा था। अभिमन्यु नहीं चाहता था प्रणाली को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। वहां पहुंचकर वो दोनों सीधे अटेंडिंग डॉक्टर के कमरे में पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें देखकर शांत लहजे में कहा, मिस्टर राजवंश, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन मिस कपूर की हालत सच में ठीक नहीं है। वो ठीक से खाना पीना नहीं खा रही थी। ऊपर से कल तो उन्होंने जो भी खाया वो उल्टी के जरिए बाहर आ गया था। ऐसे में हम उन्हें सप्लीमेंट पर ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रख पाते। डॉक्टर की बात सुनकर इशिका ने आईज रोल की और बिल्कुल धीरे से कहा, हाँ वो तो दूध पीती बच्ची है ना, जो अभिमन्यु उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगा तभी वो खाएगी। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं देख लेता हूँ, अभिमन्यु बोला और फिर इशिका के साथ प्रणाली के वार्ड की तरफ बढ़ने लगा। अभिमन्यु और इशिका उसके वार्ड तक पहुंची भी नहीं थी कि प्रणाली ने उन्हें देख लिया था। प्रणाली उठकर बैठी। अभिमन्यु के दरवाजे के पास आने पर प्रणाली ने खुश होकर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, ऐसे मौके पर मुझे मेरे दोस्त और किसी सहारे की जरूरत थी। उल्टी करना बहुत बुरा होता है, उसके बाद में खाना खाना तो और भी बेकार लगता है। तुम साथ रहोगे तो मुझे कड़वा खाना और दवाइयां भी अच्छी लगने लगेंगी। अभिमन्यु ने उसकी बात को सुना लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। अचानक उसने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ में अंदर ले जाने लगा। अभिमन्यु इशिका के आगे था, इस वजह से प्रणाली उसे देख नहीं पा रही थी। लेकिन इशिका ने देखा, प्रणाली उस दिन से ज्यादा कमजोर हो गई थी जब आखिरी बार उसने उसे दादी के बर्थ पर देखा था। ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल गाउन किसी लकड़ी के डंडे को पहनाया गया हो। अभिमन्यु, प्रणाली ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वहीं अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस गहरे हो गए थे। उसने सख्ती से कहा, हाँ डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। देखो तुमसे मिलने के लिए मेरी पत्नी तक यहाँ पर आ गई है। अभिमन्यु ने जानबूझकर मेरी पत्नी शब्द पर जोर दिया था कि प्रणाली किसी तरह की उम्मीद ना लगा कर रखें। अभिमन्यु के शब्दों का प्रणाली पर गहरा असर हुआ। वो कांपने लगी थी और उसने नफरत भरी निगाहों से इशिका की तरफ देखा। फिर वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए भारी आवाज में बोली, अभिमन्यु इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है कि मैं अब शादी कर चुका हूँ, बार बार अपना काम और वाइफ को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, तो बेहतर होगा कि तुम खुद को संभालना सीख लो, अभिमन्यु ने थोड़ा क्रूरता के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर प्रणाली की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। उसने सिसकते हुए कहा, इसका मतलब अब तुम मेरी देखभाल नहीं करोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मेडिकल बिल पे कर दूंगा, आगे भी करता रहूंगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। तो क्या अब तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे? प्रणाली ने कांपती आवाज में पूछा। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रणाली ये सब सहन नहीं कर सकी। वो बिस्तर से उठी और अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ना खाने की वजह से उसे चक्कर आ गया था। वो तुरंत बेड पर बैठ गई और रोते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो अभिमन्यु, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या इसका एहसान तुम इस तरह उतारोगे? तुम समझते क्यों नहीं हो, अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मुझे सब याद है, लेकिन 9 साल के बच्चे की बातों का कोई मतलब नहीं होता है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो काफी रूखे तरीके से बात कर रहा था, लेकिन मेरे लिए उन बातों का मतलब था, प्रणाली ने तेज आवाज में कहा। वो आगे बोली, मैंने तुम्हारी हर एक बात को सीरियसली लिया था और आज तक तुम्हारा इंतजार करती रही। आज जो तुमने शादी कर ली तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो, तुम मेरे जीने की वजह हो। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मेरे जीने का क्या मतलब हुआ? तुम इस तरह अपने वादे से मुकर नहीं सकते हो। प्रणाली उठकर अभिमन्यु के पास आना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी। वो आंसू बहाए जा रही थी। तभी अभिमन्यु ने सर्द आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी केयर करने का प्रॉमिस किया था, तुमसे शादी करने का नहीं। लेकिन तुमने तो किसी और से शादी कर ली ना, थोड़े दिनों में तुम अपनी पत्नी और काम के चक्कर में मुझे भूल जाओगे, फिर तुम दोनों के बच्चे हो जाएंगे, तो मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, प्रणाली बोली। वो हर तरीके से अभिमन्यु को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी।
अचानक प्रणाली के चेहरे के भाव सख्त हो गए और वो किसी साइको की तरह बातें करने लगी। प्रणाली का सर नीचे की तरफ था। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मुझसे कौन प्यार करेगा? तुम अच्छे से जानते हो मेरी सिचुएशन क्या है। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, प्रणाली ने खुद से कहा। अभिमन्यु के पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन साथ ही वो प्रणाली के बातों के जाल में भी नहीं फंसना चाहता था। इशिका अब तक सारी बातें गौर से सुन रही थी। वो आगे आई और प्रणाली की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में बोली, तुम बार बार एक ही बात दोहरा रही हो कि उसने तुमसे शादी का वादा किया था। बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, इस तरह उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है। जहां तक मैं जानती हूँ, उस उम्र में शादी का सही मतलब तक आपको पता नहीं होता है। प्रणाली अब पूरी तरह चुप हो गई थी। इशिका प्रणाली के पास आई और आगे बोली, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ना कि अपने किए गलत कामों को दूसरों के ऊपर डालकर खुद को विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहिए। इशिका की पर्सनैलिटी देखकर प्रणाली कांपने लगी। वो रोते हुए बोली, तुम कुछ नहीं जानती हो, इसने मुझे वादा किया था। इशिका ने सिर हिलाया और हल्का हंसते हुए बोली, मैंने कहा ना, बचपन की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है। मेरी लाइफ में भी एक लड़का था जिसने कहा था कि मैं वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। हाँ, मुझे उसका इंतजार था, लेकिन मैं उसके भरोसे नहीं बैठी थी। वैसे ही तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी चाहिए। प्रणाली तो चुप हो गई थी, लेकिन अभिमन्यु अभी भी इशिका के शब्दों के बारे में सोच रहा था। उसने अचानक इशिका से पूछा, तुमने कहा कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का था, क्या उसने तुम्हें शादी का वादा किया था? बचपन में सब एक साथ खेलते हैं और इस तरह के प्रॉमिस करते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमें उस उम्र में ऐसी बड़ी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। बहुत से बच्चे गुड़िया गुड़िया का खेल खेलते हैं, उनकी शादी करवाते हैं, कौन सा उनकी शादी सच में हो जाती है, इशिका ने बेपरवाही से कहा। इशिका को लगा कि उसने प्रणाली को समझा दिया है, पर प्रणाली इतनी आसानी से कहां मानने वाली थी। वो गुस्से में बोली, तुम कुछ नहीं जानती तो चुप रहो, इसने मुझसे वादा किया था, अगर मैं वहां पर नहीं होती तो वो लोग इसकी जान ले लेते। तुम जानती क्या हो हमारी लाइफ के बारे में, मैंने ही इसे वहां से निकलने में हेल्प की थी।
अगर हम उस जगह से बाहर नहीं निकलते तो अभिमन्यु राजवंश की आज कोई शख्सियत नहीं होती। वो रोड पर भीख मांग रहा होता या फिर माफिया के लिए चोरी चकारी जैसे काम कर रहा होता। उसके बाद प्रणाली ने गुस्से में अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, तुम अपने वादे से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो अभिमन्यु, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था और तुम्हें वो निभाना ही होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। वही प्रणाली की बातें सुनकर इशिका चौंक गई थी। उसे ये कहानी बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे किडनैप होना और वहां से भागने में मदद करना। इशिका ने एक नज़र हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखा। यहाँ आते वक्त उसने ये जरूर बताया था कि प्रणाली ने उसकी जान बचाई है, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया था। इशिका ने अपने मन में कहा, तो क्या वो किडनैपर सच में अभिमन्यु को जान से मार देते? अभिमन्यु के साथ में बचपन में वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। सच में प्रणाली ने इसके ऊपर काफी बड़ा एहसान किया है। अब समझ आ रहा है कि अभिमन्यु इसे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा। इशिका प्रणाली के सपोर्ट में कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त बच्चा था और मैंने गलती से कुछ भी कह दिया होगा। अभिमन्यु ने अभी भी इशिका का हाथ पकड़ रखा था। उसने आगे कहा, पहले मुझे भी यही लगता था कि बचपन का वादा निभाना जरूरी होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की प्रणाली, मैं उम्र भर बिना शादी किए हुए रहने को तैयार था, लेकिन हमारे बीच कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी इशिका से अचानक शादी हो जाएगी और मैं उससे प्यार करने लगूंगा, वरना सच में मैं किसी से शादी नहीं करता। उसके बाद मानो आगे अभिमन्यु अपना फैसला सुनाने जा रहा था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और सख्त आवाज में कहा, मैं तुम दोनों के साथ रहकर खुद को या तुम दोनों को धोखा नहीं दे सकता। मुझे एक को चुनना होगा प्रणाली, और मैं इशिका को चुनता हूँ। अभिमन्यु का फैसला सुनकर प्रणाली और इशिका दोनों ही चौंक गई थीं। वो आगे बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हॉस्पिटल की सारी फीस मैं हमेशा पे करूंगा। हाँ, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा और ना ही बात कर पाऊंगा, तो मैं पृथ्वी को बोल दूंगा कि कोई एक इंसान तुम्हारे लिए असाइन कर देगा ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। प्रणाली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। प्रणाली जैसे तैसे करके कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले आया। उनके पीछे से प्रणाली रोते हुए अभिमन्यु को ना छोड़ने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। इशिका को प्रणाली के लिए बुरा लग रहा था, वो बहुत ज्यादा बीमार थी और ऐसे में उसका कोई नहीं था। प्रणाली रोते हुए चिल्ला रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली अभिमन्यु ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उसने इशिका का हाथ काफी टाइटली पकड़ा हुआ था। उसे अजीब लग रहा था कि कोई लड़का उसके लिए अपने वादे को भूलकर उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था। इशिका को दिल ही दिल में अच्छा लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अब वो अभिमन्यु का हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। प्रणाली को छोड़ने के बाद इशिका और अभिमन्यु गाड़ी में आ गए थे। रास्ते में प्रणाली बार बार अभिमन्यु को कॉल कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने एक दो बार कॉल काटने के बाद उसे ब्लॉक कर दिया था। अभिमन्यु इशिका को कुछ कहने जा रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। सामने से एक आवाज आई, मिस्टर राजवंश, आपको आना होगा, मिस कपूर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है।